संख्या 13 और 14। श्लोक संख्या 13 का अनुवाद इस प्रकार है। हे भगवान, हम लोग यहां पर आपके स्वरूप का दर्शन करने आए हैं, जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं स्वरूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। श्लोक संख्या 14। श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम् गिरिशं प्रत्यभाषत। श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम् गिरिशं प्रत्यभाषत। श्रीशुक उवाच एवम् अभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम् गिरिशं प्रत्यभाषत। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार अभ्यर्थितः प्रार्थना किए जाने पर विष्णु भगवान भगवान विष्णु ने शूल पाणिना त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा प्रहस्य हस्ते हुए भाव गंभीरम अत्यंत गंभीरता पूर्वक गिरिशम भगवान शिव को प्रत्यभाषता उत्तर दिया। अनुवाद श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। कृपया एक बार दोहराएं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। तात्पर्य भगवान विष्णु योगेश्वर कहलाते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णा योगी जन योगाभ्यास द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं किंतु भगवान कृष्ण तो योग शक्ति के ईश्वर कहलाते हैं। शिवजी उस मोहिनी मूर्ति को देखना चाहते थे जिससे सारा जगत मोहित था और भगवान विष्णु इस विचार में मग्न थे कि शिवजी को भी किस तरह मोहा जाए, इसलिए भाव गंभीरम शब्द का प्रयोग हुआ। माया को दुर्गा देवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो गिरीश या शिवजी की पत्नी है। जो शिव दुर्गा जी द्वारा मोहित नहीं हो पाए थे वे ही अब जब भगवान विष्णु के स्त्री रूप को देखना चाह रहे थे तो भगवान विष्णु अपने योग शक्ति से ऐसा रूप धारण करेंगे जो उनको भी मोह सके, इसलिए भगवान विष्णु गंभीर थे और साथ ही हंसते जा रहे थे। ओम अज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः। Shriyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sadrajatam Dana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine हे भगवान हम लोग यहां पर आपके स्वरूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया हरे कृष्णा तो हम देखते हैं जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से भगवान शिव अपने परिकरों के साथ भगवान विष्णु के समक्ष आए हैं उन्होंने पिछले श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की और आज के इन श्लोकों में वे अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वे उनके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जिससे उन्होंने सभी असुरों को मोहित किया था और अमृत दिया था देवताओं को और फिर श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक का उच्चारण करते हैं एवं अभ्यर्थिता विष्णु भगवान शूल पाणिना शूल यानी त्रिशूल जो त्रिशूल धारण करते हैं भगवान शिव वो गए विष्णु भगवान के पास और एवं इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पित की अभ्यर्थिता प्रार्थना अर्पित की और जब उन्होंने प्रार्थना अर्पित की तो क्या किया प्रहस्य प्रहस्य का क्या अर्थ होता है श्रीमद् भगवत गीता में भी यह शब्द आता है कि जब अर्जुन अलग अलग कारण दे रहे थे भगवान कृष्ण को तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तो प्रहस्य यहां भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं प्रहस्य और साथ ही साथ भाव गंभीरम मुस्कुरा भी रहे हैं और उनका भाव कैसा है बहुत गंभीर भाव है गंभीर भाव क्यों है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भगवान शिव कोई साधारण पुरुष नहीं है वो दुर्गा के साक्षात पति हैं वो उनसे भी मोहित नहीं होते तो अगर इनको मोहित करना है तो इसलिए वो भगवान गंभीरम ये सोच रहे हैं प्रहस्य भाव गंभीरम गिरीशम गिरीश किनका नाम है भगवान शिव का प्रत्यभाषिता उनको उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया तो देखते हैं कि जब भगवान शिव हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है और इस श्लोक के माध्यम से और खासकर जो ये लीला है बहुत ही विशेष लीला है इसमें भगवान शिव इस एक प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की महिमा का महिमा और उनका गुणगान स्थापित करते हैं और भगवान विष्णु भी भगवान शिव की महिमा को यहां पर स्थापित करेंगे आप देखेंगे किस प्रकार से भगवान शिव आगे चलकर पूर्ण रूप से मोहित हो जाएंगे और जब वो वापस अपने सेंसेस में आएंगे तो आगे श्लोकों में वर्णन है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई एम्बेरसमेंट नहीं हुई, बल्कि वो गर्वित उन्होंने महसूस किया कि मेरे जो मास्टर है उनसे मैं पराजित हुआ, कि मेरे जो ईश्वर है कितने महान है। और इस प्रकार से वो भगवान विष्णु की महिमा को स्थापित करते हैं, और भगवान विष्णु भी इस लीला के माध्यम से भगवान शिव की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। एक तरह से अगर कोई दो महान पर्सनालिटीज आपस में मिलके एक ड्रामा पुट अप कर ले एक जन साधारण के लिए, एक शिक्षा देने के लिए, तो उस प्रकार से ये लीला है। और इसमें देखते हैं कि कैसे ये जो लीला है श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन हुआ है, और श्रीला प्रभुपाद और प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से हमें इस लीला को ठीक रूप से समझने का अवसर भी प्रदान हुआ है। अगर हम सिर्फ श्लोक पढ़ें और श्लोक के अनुवाद पढ़ें तो कोई भी बहुत भ्रमित हो सकता है इस लीला को सुनकर, परंतु श्रीला प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने अपने तात्पर्य दिए हैं और इन तात्पर्यों के माध्यम से हम इसको ठीक रूप से समझ सकते हैं। और इस लीला को श्रीमद् भागवतम में श्रीला व्यासदेव लिख रहे हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई इस लीला को लिखने के लिए। श्रीला सुखदेव गोस्वामी को किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई परीक्षित महाराज को ही सुनाने के लिए, और सूत गोस्वामी और अन्य ऋषिगण इस लीला की चर्चा कर रहे हैं जो किस प्रकार से भगवान शिव मोहित हुए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो लीला है पूर्ण रूप से दिव्य धरातल पर है और भगवान और उनके भक्त की महिमा स्थापित करने के लिए है। देखते हैं भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है। रुद्र संप्रदाय उन्हीं से शुरुआत होता है जो विष्णु स्वामी का संप्रदाय है। भगवान शिव को पुरुष कहा गया है, विष्णु तत्व पुरुष है, प्रकट उनकी जितनी शक्तियां हैं और जीव तत्व ये प्रकृति है, परंतु जो भगवान शिव है इनको पुरुष के रूप में बताया गया है। ये पुरुष भी है और साथ ही साथ सेवक, भगवान की सेवा भी करते हैं, जैसे बलराम जी हैं। बलराम जी भगवान के पहले विस्तार है, वो कृष्ण के सेवक भी हैं परंतु और पुरुष भी हैं। विष्णु परंतु वो विष्णु कैटेगरी में आते हैं, विष्णु तत्व की कैटेगरी में, परंतु जो यहाँ भगवान शिव है वो विष्णु कैटेगरी में नहीं है, जीव कैटेगरी में नहीं है, परंतु फिर भी उनको पुरुष बताया गया है। और वो साक्षात जो माया देवी है उमा उनके पति हैं, और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में ये वर्णन भी आता है कैसे इलावत में बताया गया है भगवान शिव उस आइलैंड पर रहते हैं, जो उमा है उनके 10 बिलियन मेड सर्वेंट्स, 10 बिलियन कितना हुआ, 1 बिलियन शायद 10 करोड़ होता है, तो 10 बिलियन 100 करोड़ मेड सर्वेंट्स उसके समक्ष में वो रह रहे हैं और किसी से बिल्कुल आकर्षित नहीं होते, और उनके हृदय में उनके चिंतन में कौन है, भगवान संकर्षण, हमेशा वो संकर्षण पर ध्यान लगाते हैं। और उनको वैष्णवानाम यथाशंभु सबसे महान भक्त के रूप में भी स्थापित किया गया है। जब मायापुर में जाते हैं आप देखते हैं पंचानंद तला, वहां से जब परिक्रमा की शुरुआत होती है सीमंत द्वीप से, तो सबसे पहले भगवान शिव की आज्ञा लेकर ही उस परिक्रमा को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फिर गोद्रुम द्वीप में हरिहर क्षेत्र, वहां पे जहां पे उनके विग्रह हैं, आधे भगवान शिव और आधे भगवान विष्णु, भगवान शिव की तरफ पार्वती के विग्रह और भगवान विष्णु की तरफ लक्ष्मी के विग्रह, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु इनके इस प्रकार के जो विग्रह हैं हरिहर क्षेत्र में। और बताते हैं कि वहां पर कोई भी जीव शरीर छोड़ता है तो अंत में भगवान शिव उसके पास आते हैं, उसके कान में गौरांगन इसका नाम उच्चारण करते हैं, और इस प्रकार से वो व्यक्ति वापस भागवत धाम जाता है। गौरांगन गौरांगन, तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव कितने महान भक्त हैं। और इसके बाद जब मध्य द्वीप में एक विग्रह है हंस वाहन, उसकी जो लीला आती है कि कैसे जब भगवान एक वहां पर गौर कथा हो रही थी और भगवान शिव उस गौर कथा को सुनने के लिए उनका जो वाहक है नंदी बैल उस पर आ रहे थे, परंतु जो वाहक है कैसा है, थोड़ा सा धीमी गति में चलता है, परंतु भगवान शिव इतने उत्सुक थे, इतने ललायत थे गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए कि वे तुरंत उस स्थान पर जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने जो ब्रदर तो ने अपने जो पिता हैं उनसे, उनके पति ब्रह्मा जी से, उनका जो वाहन है हंस वाहन उधार लिया और हंस वाहन पर तेजी से उस स्थान स्थल पर पहुंचे जहां गौर कथा हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव भगवान विष्णु के कितने महान भक्त हैं और उनकी हमेशा ये लालसा रहती है भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए, और यहां पर भी वो भगवान के इस विशेष रूप के दर्शन करने के लिए आए हैं। और हमारे महान आचार्यों ने भी अलग अलग वैष्णव भजन में भगवान शिव का बहुत गुणगान किया है, कि जैसे हम प्रतिदिन गौर आरती गाते हैं तो गौर आरती में एक लाइन आती है जिसमें भगवान शिव का वर्णन है, कौन सी? भगवान शिव और आगे शुभदेव नारद आगे, वो सब क्या कर रहे हैं? प्रेम पूर्वक गौरांग महाप्रभु की आरती में भाग ले रहे हैं। और जब ये भजन आता है नारद मुनि बजाएं वीणा राधिका रमन नाम है, जब नारद मुनि ये वीणा बजाते हैं और राधिका रमन इस प्रकार से इन नामों का उच्चारण करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर भगवान शिव भी ब्रह्मा सारे जो देवतागण है इस पवित्र कीर्तन में भाग लेते हैं। और अब देखेंगे जब कोई भी लीला ले लीजिए, जब भगवान राम का प्रकट्य हुआ, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौ नताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जब भगवान राम का प्रकट्य हुआ तो उन्होंने भगवान शिव के संदर्भ में कुछ लीलाएं की, जब भगवान कृष्ण का प्रकट्य हुआ तो अनेक लीला है भगवान शिव के साथ, और गौरांग महाप्रभु के साथ भी भगवान शिव की अनेक अनेक लीलाएं हैं। रामायण, अभी दिवाली आने वाला है तो रामायण में आपको इंसिडेंट याद है जिसमें भगवान राम ने शिव जी के संदर्भ में कुछ प्रसंग आता हो, जब उन्होंने जब सीता के स्वयंवर में गए तो जो जनक महाराज के पास जो उनके पूर्वजों से वो धनुष था भगवान शिव का, तो उनका स्वयंवर में क्या था, जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा तो उनके साथ माता सीता को वो देंगे पत्नी के रूप में, तो कोई उठाने के दूर की बात कोई इसको हिला भी नहीं सका था, परंतु भगवान राम जब गए तो बताया जाता है कि जैसे हाथी का छोटा बच्चा होता है और गन्ने को तोड़ देता है, उस प्रकार से भगवान राम ने बिना किसी प्रयास के ऐसा लगा एफर्टलेसली उस धनुष को उठाया जिसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 300 लोगों की आवश्यकता होती थी, वो भगवान शिव का धनुष है, उसको उठाया, उसको टाई कर रहे थे, टाई करते करते वो धनुष टूट गया और जोर की गर्जना हुई। तो ये देखते हैं भगवान राम और अपने जो भक्त है भगवान शिव के संदर्भ में। हम ये भी देखते हैं रामेश्वर में राम और शिव का एक मंदिर भी है। फिर गौरांग महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौरांग महाप्रभु का जो सन्यासी दंड था उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, तो भाई रूप से गौरांग महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा या तो तुम सब आगे जाओ या मुझे आगे जाना जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और उसके बाद देखते हैं भगवान गौरांग महाप्रभु आगे जाते हैं और आगे जाके भगवान शिव के एक मंदिर में प्रवेश करते हैं, जलेश्वर महादेव का एक वहां पे मंदिर है, और देखते हैं वहां इतने अच्छे रूप से भगवान शिव की पूजा हो रही है, तो गौरांग महाप्रभु बहुत भाव विभोर होकर कीर्तन प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से वो अपने महान भक्त भगवान शिव का गुणगान करते हैं। और भगवान कृष्ण की लीलाएं में तो अनेक, ये श्रीमद् भागवतम में 4th स्कंद में 10th स्कंद में अनेक अनेक लीलाएं आती हैं। तो भगवान शिव के मुख्यतः 2 रोल्स हैं। पहला रोल तो है सृष्टि के संदर्भ में कि इस सृष्टि का वो संहार करते हैं, तमोगुण के वो अधिष्ठाता हैं, और उस रोल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करता है उनका और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष कि बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो चाहे वो कोई ऐसा वरदान ही क्यों ना मांगे कि वो उसके खुद के लिए हानिकारक हो या समाज के लिए हानिकारक हो, परंतु क्योंकि उसने तपस्या की है, क्योंकि उसने वो योग्यता प्राप्त की है, तो भगवान शिव उसको वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये तो हो गया एक बाह्य रूप से, एक अपने जो क्रिएशन के संदर्भ में जो वो रोल प्ले करते हैं, परंतु इसके साथ साथ भगवान शिव को का एक है आंतरिक गुण। अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसको ठीक रूप से पहचानना चाहते हैं तो आपको उनके हृदय को जानना पड़ेगा, वो किस प्रकार से, क्या उनकी चेतना है, क्या उनकी हृदय की सबसे प्रगाढ़ इच्छा है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इन सबको जानना पड़ेगा। और भगवान शिव की सबसे हृदय की इच्छा क्या है, ये हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में। चौथे स्कंद में जब पृथु महाराज की लीला आती है, पृथु महाराज के पुत्र थे अंतर्धान, उनके पुत्र थे अविर्धान, और उनके पुत्र थे महाराज प्राचीन बरीही, और महाराज प्राचीन बरीही उनका नारद मुनि के द्वारा उद्धार हुआ, और उनके पुत्र थे प्रचेतास, और महाराज प्राचीन बरीही ने अपने जो पुत्र थे प्रचेतास उनको ये निर्देश दिया कि वो जाए और इस सृष्टि, इस आगे प्रजा को उत्पन्न करें, और इस कार्य के लिए उन्होंने कहा कि पहले आप योग्यता हासिल कीजिए तपस्या करके। उन्होंने कहा कि आप तपस्या कैसे कीजिए, भगवान परम भगवान की आराधना करने के लिए उनको भेजा, और उसमें एक श्लोक में वर्णन आता है वो योग्यता क्या थी, टू गो एंड हैव योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड प्यूरिटी ऑफ हार्ट, कि अपने मानसिक बल उत्पन्न कीजिए और हृदय में शुद्धता उत्पन्न कीजिए। मानसिक बल किससे उत्पन्न होता है, तपस्या से, और जो शुद्धता है वो किससे आती है, भगवान का, भगवान की आराधना से, भगवान के गुणगान से। तो इसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में, रुद्र गीत के नाम से अध्याय है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका जो इस चर्चा को इसलिए कर रहे हैं कि ये बताने के लिए कि जो भगवान शिव है उनके हृदय में क्या है, उनका असली हृदय की इच्छा क्या है। तो मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं कि कैसे हैं। विदुर मुनि ने पहले मैत्री मुनि ने विदुर जी को बताया कि कैसे प्राचीन भरी के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें भगवान शिव मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। तो तुरंत विदुर मुनि ने मैत्री मुनि से पूछा कि शिव जी इन प्रचेताओं को क्यों मिले, क्योंकि भगवान शिव से मुलाकात करना बताया गया अत्यंत दुर्लभ है, इट इज वेरी रेयर टू सी लॉर्ड शिवा। तो विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिवजी का समागम कर पाना अत्यंत कठिन है, बड़े बड़े ऋषि ध्यान में लीन रहकर भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। और फिर आगे श्लोक आता है, मैत्रेय वाच प्रचेतस पितुर्वाक्यम शीरसादाय साधवा दिशं प्रति चिम प्रयुस्तपस्या द्रक्त चेत सह। ऋषि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन भरी के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो प्रचेताओं में ऐसा क्या गुण था कि भगवान शिव स्वयं उनसे मिलने के लिए आए, वो इस श्लोक में वर्णन आता है। उनका ऐसा क्या गुण था, पितुर वाक्यम शीर सा दाय, जो उनके पिता थे, जो अब शुद्ध भक्त बन चुके थे, उनका जो वाक्य था शीर सा दाय, यानी उन्होंने अपने शीश पर रखा, यानी प्रचेतास ने जो उनके जो वरिष्ठ जन थे उनका जो निर्देश था, उनकी जो आज्ञा थी, उसको शीश पर धारण की। शीश पर धारण करने का क्या अर्थ है, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं, पिता गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि वे अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। वरिष्ठ जनों का क्या कर्तव्य है और शिष्यों का क्या कर्तव्य है, शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं। वरिष्ठ जनों का क्या कर्तव्य है कि वे इस प्रकार से गाइड करें अपने डिपेंडेंट्स को कि वे अंततः भगवान को प्राप्त हो सके, और जो एक प्रामाणिक शिष्य है उसका क्या कर्तव्य है, ये तो बड़ों का और अधीनस्थों का कर्तव्य है कि वे आदेशों को सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें, शीर्षा अपने मस्तक पर, क्योंकि प्रचेताओं ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उसे पूरी तरह स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? जो उन्हें निर्देश मिला उन्होंने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया और तपस्या करने से वो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल उन्होंने उस विलिंगनेस के साथ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गए परम सत्य को जानने के लिए। तो क्योंकि वो इतने सिंसियर थे इसलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए, जिनको बड़े बड़े ऋषिगण इतनी तपस्या करने के बाद भी उनसे उनका संसर्ग नहीं मिल पाता, परंतु यहाँ पे प्रचेता का वो गुण था कि गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते करिया एका। इस तात्पर्य में बताता व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका गुरु नंदना। और बताते हैं आगे चलते चलते प्रचेता ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की शरण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। क्यों? जिस स्थान पर वो गए वहां का जल इतना शांत था, जिसकी तुलना की गई है कि मानो एक महान ऋषि का मन जिस प्रकार से शांत होता है उस प्रकार से उसका जल इतना शांत था, और उन्होंने उस पानी के अंदर रह के तपस्या की थी। और आगे वर्णन आता है कि भगवान शिव दिखते किस प्रकार है इन श्लोकों में। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति, भगवान शिव की शारीरिक कांति किस रंग की है? तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था, उनके तीन नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे, उनके साथ अनेक गंधर्व थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिवजी को देखा तो तुरंत ही कुतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। तो भगवान शिव का यहां शरीर की कांति एक स्वर्ण तपते हुए जो सोने के समान बताई गई है। और आगे भगवान शिव उन प्रचेतास को ये निर्देश देना प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। कोई व्यक्ति अपनी कृपा किसी पर कब करता है? जब वो उसे बहुत ही प्रसन्न हो, जब उसे हृदय से प्रसन्न हो। तो भगवान शिव प्रचेताओं के इस भाव को देखकर हृदय से प्रसन्न थे, इसलिए वो उनसे स्वयं मिलने के लिए प्रकट हुए अपने परिकरों के साथ। और फिर आगे भगवान शिव उन्हें क्या निर्देश दे रहे हैं? जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीव आत्मा में से प्रत्येक के नियामक श्री भगवान के शरणागत हैं, वह मुझे परम प्रिय हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए श्री भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार मैं ये जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। तो बताया गया भगवान शिव बताते हैं उन्हें जो भक्त हैं उनको सबसे प्रिय है भगवान शिव, क्योंकि वो उनकी सहायता करते हैं परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे उनका रुद्र संप्रदाय है। और आगे वो उन्हें रुद्र की उन्हें मंत्र देंगे और बताते हैं अगर जो भी इस मंत्र को ध्यान पूर्वक जप करता है उसे निश्चित रूप से परम सत्य की प्राप्ति होगी। तो ये इसका वर्णन इसलिए कि ये बताने के लिए कि अगर आप भगवान शिव को जानना चाहते हैं तो उनके वास्तविक हृदय को जानें, और उनके वास्तविक हृदय में क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान संकर्षण के प्रति शरणागति। और बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने हेतु इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ उन्हें बताया गया वांछा कल्पत रूपश्च, एक महान वैष्णव के रूप में उन्हें बताया गया है परम करुणा। उनकी कोई उनके पास जाके कैसी भी इच्छा करे, हम देखते हैं कृष्णा पुस्तक में, चाहे वो बाणासुर हो, वृकासुर हो या शाल हो, किस प्रकार की इच्छाएं कर रहे हैं और किस प्रकार की तपस्याएं कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। परंतु और ऐसा भी होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग रूप से लोग अलग अलग मेथड्स को कंकॉक्ट करते हैं, परंतु भगवान शिव उनके भाव को जानते हुए उन पर कृपा करके उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में बताते थे कि भगवान शिव अपने एक मॉर्निंग वॉक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक साधक को माया से सावधान होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि इवन लॉर्ड शिवा इज नॉट स्पेयर्ड, कि भगवान शिव भी नहीं बच सके, वो इस लीला का संदर्भ लेके बता रहे हैं। तो एक जनरल आम साधक की क्या स्थिति है। साथ ही साथ नौवें स्कंद में वर्णन आता है जिसमें बताया गया है कि जो एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है ये भय का एक बहुत बड़ा कारण है, और इसमें बताया गया है यहां ब्रह्मा और शिव भी इससे भयभीत रहते हैं। तो ऐसा इसको भय का सबसे बड़ा कारण क्यों बताया गया है, क्योंकि जो पुरुष और स्त्री का जो आपस में आकर्षण है, अगर वो अटैचमेंट जो आसक्ति बनती है उससे एक नया शरीर मिलता है, और नया शरीर प्राप्त करने से वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उस चक्र में वो जीव आत्मा फंसती है। तो अंत में मैं पहले हमने डिस्कस किया कि भगवान शिव का क्या महिमा है, उनका वास्तव में क्या व्यक्तित्व है। मैं अंतिम पड़ाव में चर्चा करना चाहूंगा कि एक वैष्णव का, एक व्यक्ति का सही दृष्टिकोण क्या है भगवान शिव के प्रति। और इसको बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपनी अनेक लीलाओं से बताते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क के आदि लीला में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो किशोरी बालिकाएं हैं वो भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करती थी गंगा के तट पर। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किसी को भी अगर अच्छा पति चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव एक तो बहुत शांत है और बहुत ही शक्तिशाली है, तो उन्हें लगता है कि भगवान शिव की आराधना करके उनको उनके समान एक पति प्राप्त होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस पर जाते थे तो वो उनको बहुत तंग किया करते थे वहां कन्याओं को, और कहते थे कि तुम ये किन की पूजा कर रहे हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव तो मेरे सेवक हैं और भगवान जो पार्वती है वो मेरी सेविकाएं हैं, तो जो तुम्हारी असली इच्छा है मैं पूरी करूंगा। तो इस लीला के माध्यम से वो बताते हैं कि अगर किसी को अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु के लिए किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु साथ ही साथ वाणी लीला के माध्यम से ये भी बताते हैं कि भगवान शिव की महिमा क्या है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर भगवान शिव की आराधना करके हमारी आसक्ति कृष्ण में बढ़ती है तो उसको वो प्रमाणिक है। जैसे गोपियां वो भगवान शिव की आराधना किया करती थी, परंतु उस आराधना के माध्यम से उनकी कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती थी। वो कात्यायनी की भी आराधना करती थी जो दुर्गा है, उनकी आराधना से भी उनकी आसक्ति, उसका जो लक्ष्य क्या है वो कृष्ण की ओर बढ़ता था, इसलिए उनकी आराधना, इसलिए उसको प्रमाणिक बताया गया है। और इसके बाद कृष्णा पुस्तक में ये लीला आती है कि कैसे जो बाणासुर है, बाणासुर भगवान शिव का एक महान भक्त था, और उस बाणासुर के कितने हाथ थे, हजार हाथ थे। और बताते हैं जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे तो हजार हाथों से उन्होंने भगवान शिव के लिए ड्रम बजाया था। अगर कोई नॉर्मल ड्रम बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, तो हाथों से बजाते हैं, परंतु भगवान शिव को उन्होंने संतुष्ट किया था अपने हजारों हाथों का प्रयोग करके उनके लिए ड्रम बजाकर। और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय थे, और फिर बाणासुर उनके पास गए भगवान शिव के पास, उन्होंने कहा आपने मेरे को ये हाथ तो दे दिए हैं परंतु इसका मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी वो जाते थे उन हाथों से पहाड़ों को तोड़ दिया करते थे, जाते थे अलग अलग योद्धाओं से युद्ध किया करते थे, परंतु उनका जो कैलिबर का उनको कोई सुटेबल कॉम्पिटिटर नहीं मिलता था। तो भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके समान, आपके अलावा मेरे को कोई भी एक सुटेबल कॉम्पिटिटर नहीं दिखता जिसके साथ मैं ये युद्ध कर सकूं, मेरे हजार हाथ हैं और मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति, लिखा है और rascal, very soon our Supreme Lord will appear and he will crush your pride. He will be a suitable competitor. और ये सुनकर बाणासुर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि हाँ बहुत जल्दी मेरे समान कोई मेरे को योद्धा मिलेगा. और ऐसा ही हुआ आगे चलकर कि जो बाणासुर की पुत्री किनका विवाह था, उषा और अनिरुद्ध, जब उन्होंने अनिरुद्ध को कैप्चर कर लिया तो पूरा का पूरा जो यदु वंश है, जो उनकी सेना है, उन्होंने उन पर धावा बोल दिया. और जब उन्होंने देखा, बाणासुर ने देखा कि जो यदु वर्ग के जितने भी सैनिक हैं, मेरे जितने भी अलग अलग गेट्स बने हैं उनको तोड़ रहे हैं, तो बहुत गुस्से में सामने आए. और बताते हैं कि वो जो युद्ध हुआ, बाणासुर को सपोर्ट करने के लिए भगवान शिव भी अपने बोल पर आए अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ. एक तरफ कृष्ण बलराम और उनकी पूरी सेना, और दूसरी तरफ बाणासुर के साथ भगवान शिव, कार्तिकेय और उनकी पूरी की पूरी सेना. और बताते हैं जो ये युद्ध इतना रोमांचकारी था कि पूरी की पूरी सृष्टि से जितने भी देवी देवता गण है सारे आ गए इस युद्ध को देखने के लिए. और बताते हैं जो बड़े बड़े क्षत्रिय गण थे, इस युद्ध को देखकर उनको इतने रोमांचित हो गए कि उनके शरीर पर जो बाल है वो खड़े हो गए. और फिर सबसे पहले युद्ध हुआ भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में, वन ऑन वन उन्होंने आपस में युद्ध किया. तो भगवान शिव कोई भी अस्त्र फेंकते थे, भगवान कृष्ण उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे. उन्होंने जितने भी अस्त्र किए, भगवान कृष्ण वो परमेश्वर है और बहुत ही आसानी से उनके सारे अस्त्रों को, वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर रहे थे. उसके बाद अंत में जो भगवान शिव का सबसे मुख्य जो वेपन है शिव ज्वर, उन्होंने उसको चलाया और भगवान कृष्ण ने नारायण ज्वर से बहुत आसानी से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. शिव ज्वर से क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और नारायण ज्वर से वो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है. तो शिव ज्वर जो वेपन है उसने देखा कि मैं तो बिल्कुल हार रहा हूं, और वो वापस गए भगवान शिव के पास कि मेरी रक्षा करो. तो भगवान शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा लास्ट रिसोर्ट मैं छोड़ चुका हूं. तो उस शिव ज्वर को भी समझ आ गया कि भगवान शिव उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो भगवान कृष्ण के प्रति गया और उनको सुंदर प्रार्थना अर्पित की, उनको शरणागत हुआ कि आप मेरी रक्षा कीजिए. और भगवान कृष्ण ने फिर उनकी रक्षा की. और फिर बाणासुर, जब भगवान शिव पराजित हो गए तो भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच में वो युद्ध हुआ. और बताते हैं बाणासुर हजार हाथों से, 500 एक उसमें धनुष थे और 1000 तीर एक साथ छोड़ते हुए भाग रहे थे भगवान कृष्ण की ओर. इतने दिनों बाद उनके जो हाथों में खुजली होती थी उसको पूरा करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ. और भगवान कृष्ण उसके 1000 हाथ से और एक साथ इतने तीर छोड़ता था, और भगवान कृष्ण अपने दो हाथों से एक साथ इतने तीर छोड़ते थे कि उसके सारे तीरों को न्यूट्रलाइज कर देते, सबको पराजित करते थे, सबको टुकड़ों में विभाजित कर देते थे. और फिर भगवान कृष्ण उनको, जैसे उनको पराजित करने वाले थे तो भगवान शिव को बहुत चिंता हुई, क्योंकि बाणासुर वास्तव में भगवान शिव के हृदय के बहुत करीब था, उनका बहुत प्रिय भक्त था. तो भगवान शिव ये याचना करने आए कि भगवान कृष्ण को उन्होंने स्तुति की और कहा कि बाणासुर मेरा बहुत प्रिय भक्त है और कृपया इसको आप क्षमा कर दीजिए. और भगवान कृष्ण ने कहा निश्चित रूप से ये जो बाणासुर है किसका पुत्र था, बलि महाराज का पुत्र था. और उन्होंने कहा बलि महाराज परीक्षित महाराज की प्रहलाद महाराज की परंपरा में आ रहे हैं, और मैंने उनको ये वरदान दिया है कि तुम्हारी परंपरा में कोई भी असुर होगा उसको मैं वध नहीं करूंगा, परंतु इसका छोटे अहंकार को काटने के लिए मैं इसके सारे हाथ जरूर काटूंगा. तो उन्होंने उसके सिर्फ दो हाथ छोड़े और बाकी हाथ काट दिए. और उसके बाद अंततः भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हुए और बाणासुर भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना, उसने भी आगे आके ये स्तुतियां अर्पित की. और इसके अंत में शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि कैसे जो भगवान जितने भी देवी देवता गण हैं, अगर उन्हें किसी का भी वरदान प्राप्त देना हो, किसी की सुरक्षा करनी हो, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उसके लिए परम भगवान कृष्ण की ही सैंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और इस लीला के अंत में बताते हैं, शिला प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार वर्णन आता है कि जब भगवान शिव और कृष्ण की आपस में युद्ध हुआ, ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं था। इट्स नॉट एट ऑल इनऑस्पिशियस, जो साधारण युद्ध की तरह होता है। अगर कोई इस युद्ध को सुबह इसका स्मरण करता है और भगवान कृष्ण की विजय में बहुत ही प्लेजर लेता है, बहुत ही आनंदित होता है, तो जीवन के संघर्ष में वो कभी भी पराजित नहीं होगा। और श्रीमद् भागवत गीता में बात बताया गया, माया एवं विहितान हितान, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की अनुमति के बिना कोई भी देवी देवता अपना वरदान, अपने जो वर्शिपर है उसको नहीं दे सकता। और अंत में श्रीमद् जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस जब नित्यानंद प्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ दिया, उसके बाद वो आगे गए, तो चैतन्य भागवत में इस प्रकार से वर्णन आता है जलेश्वर पूजित आचेना विप्रगणे गंध पुष्प धूप दीप माला विभूषणे, कि जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने जलेश्वर शिव को वो चंदन से, फूलों से, अगरबत्ती से, घी से, मालाओं से और आभूषणों से उनकी पूजा कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये देखा, बहुविधा वाद्य उठाए कोलाहला चतुर्दिगे नित्य गीता परम मंगला, और उस मंदिर में बहुत ही अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे और चारों दिशाएं बहुत ही शुभ डांसिंग और सिंगिंग से भरी हुई थी। देखी प्रभु क्रोधे पाशर लीना संतोषे सही वाद्य प्रभु मिशाइला प्रेमरसे, जब चैतन्य महाप्रभु ने यह देखा तो उनका पुराना जितना गुस्सा था कि नित्यानंद प्रभु ने उनका दंड तोड़ दिया बिल्कुल शांत हो गया और उनके अंदर कृष्ण प्रेम उजागर हुआ। नीच प्रिया संकेरा विभाव देखिया नित्य करे गौर चंद्र परानंद हया, और अपने प्रिय भक्त शंकर के दर्शन करके गौर सुंदर बहुत ही भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। शिवेरा गौरव पूजाय गौर चंद्र एतेक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंद, इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु ने भगवान शिव की महिमा को उजागर किया, इसलिए शंकर भगवान एतेक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंद, कि जो शंकर भगवान है सभी वैष्णव के प्रिय हैं। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुरुषानाम इदम तथा, कि जिस प्रकार से गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से अच्युत भगवान सभी विग्रहों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार उसी प्रकार से भगवान शंभु सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। ना माने चैतन्य पट बोला या वैष्णवे शिवेरा अमान्य करे व्यर्थ तार सब, एक ऐसे व्यक्ति के प्रयास जो चैतन्य महाप्रभु के पथ का पालन नहीं करता और भगवान शिव की अवहेलना करता है और फिर भी अपने आप को वैष्णव कहता है, उसके सारे जो कार्य है निरर्थक है, दे आर ऑल यूजलेस। तो इस प्रकार से जो एक भक्तगण है चैतन्य महाप्रभु खुद उनकी महिमा को स्थापित करते हैं और बताते हैं कि जो भगवान शिव है सभी भक्तों के हृदय के बहुत प्रिय हैं और किसी भी भक्त को भगवान शिव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में ही जो दक्ष की दक्षायनी पुत्री हैं अपने पिता को इस प्रकार कहती हैं, मेरे प्रिय पिता आपने भगवान शिव से द्वेष करके एक महान अपराध किया है। भगवान शिव उनका नाम ही है शिव, शिव का अर्थ है जो शुभ है, जो सभी को अपने पापमय कार्यों से शुभ शुद्ध कर देते हैं, जिनका जो निर्देश है कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। भगवान शिव परम शुद्ध है, उन्हें कोई भी द्वेष नहीं करता, परंतु सिर्फ आप द्वेष करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी भारियां हैं वो भी बता रही हैं भगवान शिव की महिमा, कितनी महिमा है, और किसी को भी उनसे बिल्कुल द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उल्टे वो भगवान शिव सभी भक्तों के बहुत ही प्रिय गण हैं। तो समरी के लिए आज हमने देखा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से जो भगवान शिव हैं उनकी इतनी महिमा है। प्रत्येक अवतार में चाहे गौरांग महाप्रभु का हो, भगवान कृष्ण का हो, भगवान राम का हो, कितना उनका अंतरंग संबंध है भगवान से, अलग अलग लीलाएं हैं इस विषय में। और भगवान शिव का जो हृदय है, हृदय में भगवान संकर्षण की आराधना करते हैं। और कोई भी साधक जो गंभीरता पूर्वक परम सत्य को जानना चाहता है तो भगवान शिव उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, भगवान शिव सभी वैष्णवों के बहुत प्रिय हैं। उनकी आराधना करके अगर इस उद्देश्य से कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण से आसक्ति बढ़े तो वो प्रमाणिक है, परंतु अगर कोई व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करता है तो उसकी शास्त्रों में निंदा की गई है। तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।